श्रीला प्रभुपाद की अपश्यम उन्हें ना देखकर इति इस प्रकार आवाच बोला मया मेरे द्वारा अन्विष्टम खोजा गया इदम यह संपूर्ण जगत ब्रह्मांड भ्रातृः भाई का वध करने वाला विष्णु में मेरे गता चला गया होगा नूनम निश्चय ही यतः जहां से ना नहीं आवर्तते वापस आ सकता है उमान कोई मनुष्य। अनुवाद। उन्हें ना देखकर हिरण्यकश्यपु ने कहा मैंने सारा ब्रह्मांड छान मारा किंतु अपने भाई के हत्यारे विष्णु को मैं कहीं नहीं पा सका अतः वह अवश्य ही ऐसी जगह चला गया होगा जहां से कोई भी लौट के नहीं आ सकता अर्थात वह अब मर गया होगा। तात्पर्य सामान्यतः नास्तिक लोग बौद्ध दर्शन के इस निर्णय के अनुयायी होते हैं कि मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है। नास्तिक होने के कारण हिरण्यकश्यपु ने इसी तरह सोचा। चूंकि उसे भगवान विष्णु नहीं दिख रहे थे अतः उसने सोचा कि वे मर गए हैं। आज बहुत से लोग इसी विचारधारा के हैं कि ईश्वर मृत है लेकिन ईश्वर कभी भी मृत नहीं होता। यहाँ तक कि जीव भी ईश्वर का अंश है कभी नहीं मरता। ना जायते मृते वा कदाचित आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है ना मृत्यु। यह भगवद गीता का कथन है 2:20। यहाँ तक कि सामान्य जीव भी ना कभी जन्म लेता है ना मरता है तो फिर उन भगवान के विषय में क्या कहा जाए जो समस्त जीवों के प्रधान है। निश्चय ही वे ना तो कभी जन्मते हैं ना मरते हैं। अजो भी सनन्वय अन्व्यात्मा भगवद्गीता 4:6। भगवान तथा जीव दोनों ही अजन्मा तथा अव्यय व्यक्ति हैं। अतः हिरण्यकश्यप का यह निष्कर्ष कि विष्णु मर गए हैं गलत था। जैसा कि यतो ना वर्तते पुमान शब्दों से सूचित होता है कि अवश्य ही कोई आध्यात्मिक लोक है और वहां जाने पर जीव फिर कभी इस भौतिक जगत में नहीं लौटता। इसकी पुष्टि भगवद्गीता 4:9 में हुई है त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति स अर्जुन। भौतिक दृष्टि से तो हर जीव मरता है मृत्यु अवश्य संभवी अवश्य भावी है किंतु कर्मी ज्ञानी तथा योगी जन मृत्यु के बाद इस जगत में लौट आते हैं जबकि भक्त नहीं लौटते। हाँ यदि भक्त परिपूर्ण नहीं होता तो वह इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लेता है किंतु किसी उच्च पद पर या धनी कुल में या शुद्ध ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है शुचिनाम श्री मदाम गेहे जिससे उसकी आध्यात्मिक चेतना का पूरा विकास हो सके। जिन्होंने कृष्ण भानामृत का अध्ययन पूर्ण कर लिया है और जो निष्काम है वे भगवत धाम को वापस जाते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परम मम। यहाँ इसी तथ्य का वर्णन हुआ है यतो ना वर्तते पुमान। जो व्यक्ति भगवान के धाम को वापस चला जाता है तो वह फिर इस भौतिक जगत में लौटकर नहीं आता। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। बहुत ही रुचिकर प्रसंग चल रहा है ये और बहुत ही शिक्षाप्रद होगा हम सबके लिए प्रेरणादायक होगा। बलि महाराज पामर देवी से दान की याचना कर रहे हैं और पिछले अध्याय में वामन देव जी की सौंदर्य का वर्णन हुआ। सभी उनसे आकर्षित हो जाते हैं यहाँ तक कि बलि महाराज भी आकर्षित हो जाते हैं उनकी लग्न स्थली भी हो जाते हैं। और बलि महाराज छोटे से बहुत ही सुंदर ब्राह्मण को देखकर पूछते हैं बोलते हैं कि आप कुछ भी मुझसे मांग सकते हैं पूरे ब्रह्मांड में जो भी आपको आवश्यकता है मैं देने के योग्य हूँ आप मांगिए। तो यहाँ पर इस प्रसंग में हम सीखेंगे पहले कि भगवान वैसे तो सबके दाता है नित्य नित्या नाम चेतो चेतो नाम एको बहु नाम यो विधरा पिका मान सभी जीवों का पालन पोषण कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर वो एक बने हैं एक भिक्षु बने हैं ग्रहिता बने हैं मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? एक असुर से। और भगवान हमें सिखा रहे हैं अपने आचरण से कैसे मांगना चाहिए है ना आर्ट ऑफ बेगिंग। हम लोग भी प्रोफेशनल बेगर्स हैं दिव्य अधिकारी हम लोग भी वहां मांगते हैं भिक्षा मांगते हैं तो भगवान सिखा रहे हैं कैसे मांगना चाहिए। बलि महाराज ने उनको विकल्प दिया मांगे तो तुरंत मांगना शुरू नहीं किया पहले उनका गुणगान शुरू किया। और इस अध्याय के पहले 16 श्लोकों में बलि महाराज के कुल का गुणगान कर रहे हैं खूब जोर शोर से।
कहीं ना कहीं से अच्छे पॉइंट्स देख रहे हैं, असुरों के कोने में भी भगवान दिखा रहे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छी बात देखी। कैसे एक बार परम पूजनीय प्रभुपाद जी के शिष्य आए थे जिनको भी संन्यास मिला, प्रवचन में बता रहे थे, बद्रीनारायण महाराज थे, बद्रीनारायण महाराज बता रहे थे कि एक बार अमेरिका में दो भाई थे जो इतने दुष्ट थे, इतने क्रूर थे, कोई भी उनका मित्र नहीं था। तो बड़े भाई की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद नॉर्मली यही था कि वो जब चलाए गए तो उसे गुणगान करते हैं, तो पादरी था बोले कुछ गुणगान करो, तो पूरी सभा में एकदम मौन छा गया, कोई गुणगान नहीं कर पा रहा। 5-10 मिनट निकले, पादरी बोले करो कुछ तो करो, कोई है ही नहीं किसी के पास बोलने के लिए। तो एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया, बोले बोलो वेरी गुड कुछ बोलो। तो उन्होंने बोला हिज यंगर ब्रदर इज वर्स, जो छोटा भाई है उससे भी बुरा है। तो भगवान सिखा रहे हैं कुछ चाहिए तो गुणगान, गुणगान कैसे करें ढूंढ रहे हैं कुछ। तो उन्होंने बोला सबसे पहले क्या आपके भाई थे, क्या आपके कुल में देखिए आपके जो प्रकार थे, हिरण्यकश हिरण्यक्ष क्या व्यक्ति थे, क्या इतने बड़े वीर थे, अकेले गदा लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे, अकेले दिग्विजयी थे, और ढूंढते ढूंढते आए, उनका विष्णु से युद्ध हुआ और विष्णु ने बड़ी कठिनाई से उनका वध किया, बहुत कठिनाई से। और वध करने के बाद विष्णु को गर्व हो रहा था, वाह क्या लड़ाई हुई है, किस हीरो के साथ मेरी लड़ाई युद्ध हुआ है। विष्णु को बार बार सोच के बड़ा अच्छा लग रहा था कि ये असली में युद्ध हुआ है। और फिर आपके पर द्वारा दूसरे हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आ गया, उनके भाई का वध हुआ, तो विष्णु से इतने गुस्से में विष्णु को ढूंढते हुए गए और अपने हाथ में त्रिशूल लेकर, और जब त्रिशूल लेकर ढूंढते रह गए तो विष्णु को ऐसा लगा कि साक्षात मृत्यु आ रही है। और विष्णु इतना डर गए बोले कहाँ, बोले इसको तो खाली बाहर की चीजें दिखाई दे जाते हैं, इसके हृदय में घुस जाते हैं, कहीं नहीं ढूंढ पाएगा। तो विष्णु उनके नासिका के माध्यम से उनके हृदय में घुस गए, और जो वो थे हिरण्यकश्यप को वैकुंठ तक चले गए, सारी गुफाएं, सारे पर्वत, सारी सब कुछ देख लिया, समुद्र में देख लिया, कहीं नहीं मिला। उनको बहुत गुस्सा आया, और इतना गुस्सा आया तो फिर ये श्लोक है, उन्होंने बोला कि अपश्यति होवाच, कहीं दिखाई तो दे नहीं रहा, माया मुष्टम इदम जगत, सारे जगत में ढूंढ लिया, भ्रात्रा हमें गतो नाम यतो नाम वर्तते भूमा, वो एक ऐसे स्थान में चला गया जहां से कोई लौट के नहीं आता, यानी कि वो मर गए भय के कारण, वो मर गए मेरे भय के कारण। तो ऐसे महान आपके परदादा थे। तो हिरण्यकश्यप को वामनदेव जी बता रहे हैं कि वैकुंठ तक चले, वो इतने तपस्वी थे, इतने बड़े योगी थे कि वैकुंठ तक भी जा सकते थे, लेकिन वहां से वापस आ गए। और ऐसे कह रहे जब वहां से वैकुंठ से वापस आ गए, इसलिए वो ये नहीं कह रहा कि विष्णु वैकुंठ में चले गए, क्योंकि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अध्यापी जगत में कोई जाके वापस नहीं आता। तो क्योंकि वो खुद वापस आ गया, उसको कह रहा कि वैकुंठ में इससे तो वापस आ गया, वो एक और जगह स्थान पर गए जहां से कोई वापस नहीं आ सकता, यानी कि मर गए, यानी कि कोई दिखाई नहीं दे रहा, उसका मतलब मर गया, कहीं ऐसी जगह चला गया जहां से कोई वापस नहीं आता। तो हिरण्यकश्यप भी अपनी तपस्या और योग के बल पर वैकुंठ चले गए, वैकुंठ जाना वैसे तो आसान नहीं है, वैकुंठ चले गए, इस बात को कैसे समझे, फिर वापस भी आ गए। तो एक बार राधेश्याम प्रभु यहाँ आए थे, बता रहे थे समझो जो आल्टर में हमें कुछ चीजें ठीक करानी होती है तो हम इलेक्ट्रिशियन को भी घुसा देते हैं, इलेक्ट्रिशियन अंदर घुस जाते हैं यानी कि उसको ब्राह्मण दीक्षा देंगे, वो इलेक्ट्रिशियन काम करके वापस आ जाते हैं। दुर्वासा मुनि भी चले गए थे वैकुंठ, लेकिन वापस आ गए। तो भगवान के धाम में कहते हैं ना नो एडमिशन विदाउट परमिशन, बिना आज्ञा के एडमिशन नहीं है, एंड नो परमिशन विदाउट सबमिशन, बिना सबमिट किए, बिना भगवान को स्वीकार किए हम भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। तो हिरण्यकश्यप ने स्वीकार किया, नहीं गया, लेकिन वापस आ गया, उसका ये निजी अनुभव था कि वैकुंठ से मैं वापस आ गया, इसलिए वो ने सोचा कि विष्णु वहां पे नहीं है, इसका मतलब विष्णु भय से मर गए। तो ये भगवान स्वयं वर्णन कर रहे हैं। फिर अगले श्लोक में वो हिरण्यकश्यप के क्रोध का गुणगान करेंगे, कैसा क्रोध था ये, वाह, अंत समय तक विष्णु से क्रोध रहा। आम लोगों को क्रोध आता है, आता है चला जाता है, लेकिन हिरण्यकश्यप को असली क्रोध था, अंत समय तक रहा, ये गुणगान कर रहे हैं, ऐसा क्रोध था उसका। तो भगवान सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं कि विष्णु मर गए और भय से विष्णु छिप गए उनके हृदय में डर के कारण, सच बोल रहे कि झूठ बोल रहे, हालांकि उनको इतना क्रोध था, जब नरसिंह भगवान आए थे कितना क्रोध था उनको, वो बोले नहीं हिरण्यकश्यप का क्रोध ज्यादा था, नरसिंह भगवान आए थे और कितना क्रूरता से केवल नाखून से उसका वध कर दिया, इतने गुस्से में थे नरसिंह भगवान, और यहाँ बोले हिरण्यकश्यप का क्या क्रोध था और विष्णु तो छिपे गए, तो झूठ बोल रहे कि सच बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं तो वो जैसे कल बता रहे थे डुप्लीसिटी, पूरा सत्य नहीं बोल रहे, केवल गुणगान करने के तरीके से बोल रहे हैं, सच नहीं बोल रहे, परम सत्य है लेकिन सत्य नहीं बोल रहे, लेकिन परम सत्य तो जो भी बोले तो क्या है सत्य है, कोई परम सत्य है, सत्य परम भी नहीं। और भगवान कई बार झूठ भी बोलते हैं, कई बार दोगलापन जैसे बाहर यशोदा मैया ने पूछा कृष्ण से मिट्टी खाई है, बोले नहीं मैंने नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं, कोई भी झूठ नहीं बोल रहा था, खाई थी भगवान ने मिट्टी, भगवान बोले मैंने मिट्टी नहीं खाई, इन्होंने मिट्टी खाई है, तो भगवान कई बार दिखने में लगता है ऐसा झूठ बोल रहे हैं, दिखने में लगता है अनैतिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये सब होता है अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, रस का आस्वादन करने के लिए, और भक्तों इसी का स्मरण करके, इसी भगवान छल कर रहे हैं, इसी छल का स्मरण करके भगवत धाम हम वापिस जा सकते हैं, ये परम सत्य है। तो यहां तो भगवान लीला कर रहे हैं, लेकिन भगवान के परम भक्त श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में हमें महत्वपूर्ण शिक्षाएं दे रहे हैं। इस तात्पर्य में दो पैराग्राफ है और दो पैराग्राफ में प्रभुपाद जी तुलना कर रहे हैं एक नास्तिक लोक की और भक्त की, कि दोनों का मृत्यु को लेकर क्या धारणा है ना, और इस मृत्यु की धारणा के ऊपर मृत्यु का दोनों कैसे सामना करते हैं, इस दो पैराग्राफ में प्रभुपाद ने लिखा है जो हमारे लिए शिक्षाप्रद है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो गया, और दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भक्त लोग हैं वो ऐसे मृत्यु के बाद ऐसे धाम में जाते हैं जहाँ से कोई वापस लौट के नहीं आता, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म यति मामेति स अर्जुन। तो नास्तिक लोगों का मानना है कि मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाता है, मृत्यु प्रभुपाद बता रहे हैं अवश्य भावी है, अवश्य भावी है, अटल है, और इस मृत्यु के कंसेप्ट को समझना बहुत आवश्यक है, कोई भी मृत्यु की चर्चा नहीं करना चाहता, ना कोई मृत्यु को पसंद करता है, ना कोई मृत्यु चाहता है, ये अलग बात है कि कुछ लोग आत्महत्या करते हैं तो मृत्यु अपने आप स्वीकार करते हैं एक खुशी खुशी नहीं बहुत दुखी होकर, है ना। तो हालांकि कोई भी मृत्यु को नहीं चाहता, लेकिन मृत्यु सबको चाहती है, अगर हम किसी चीज को पसंद ना करें उसके बारे में चर्चा भी ना करना चाहें तो हम कितने डिस्टर्ब हो जाएंगे, कोई हमें चाहता ही नहीं, कोई हमारी चर्चा भी नहीं करना चाहता, लेकिन मृत्यु कोई परेशानी नहीं है, आप मुझे चाहो या ना चाहो मैं आपका संग कभी नहीं छोड़ूंगा, मृत्यु नित्य संगी है हमारी, हमेशा हमारे साथ रहती है हमेशा। और अगर हम मृत्यु को नहीं जानते, या तो लोग बोलते हैं छोड़ो यार क्या चर्चा कर ली, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि बकरियां हैं वो कतल खाने में जा रही हैं, बाहर अच्छी अच्छी घास खा रही हैं, एक एक करके बकरी जा रही है, तो कोई भी बकरी चिंता नहीं कर रही, चिंता क्या करना, जब आएगा तब देखेंगे, या तो लोग बिल्कुल एकदम मस्त हो जाते हैं कोई चर्चा नहीं करनी, या फिर हमेशा मृत्यु को सोचकर डरते रहते हैं, कई बार भक्तों से भी चर्चा होती, बोलते हैं मृत्यु से बहुत भय लगता है, क्या होगा उस समय कैसे सामना करेंगे। तो दोनों ही केसेस में या तो हमें मृत्यु से बहुत भय लगता है या हम मृत्यु के बारे में सोचना नहीं चाहते, ये दोनों अज्ञानता के लक्षण है कि कब तक उसको अवॉइड करेंगे, नहीं 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 सोचना छोड़ो। जितना ज्यादा हम मृत्यु को समझ पाएंगे क्या है मृत्यु कैसे इसका सामना करें, उतना हमारा जीवन बहुत ही आनंदमय होगा। ये हैराने की बात है कि मृत्यु से डरना नहीं, मृत्यु को अवॉइड नहीं करना, मृत्यु को जानना है, जब ये अटल है। एक बार याद है मैं अमोघ लीला प्रभु आए थे, उन्होंने बात सुनाई थी कैसे मृत्यु अटल है, कि एक बार मृत्यु आती है एक व्यक्ति के पास जो कि बड़ा आईटी प्रोफेशनल है, आज कलयुग का बड़ा अल्ट्रा मॉडर्न व्यक्ति, तो मृत्यु आती है भैया चलो, बोले कैसे आ गया, बोले सबसे पहले आपका नाम है मेरे पास लिस्ट है। तो ये व्यक्ति था बोला काफी चलाक शातिर व्यक्ति था, बोले आप आए हैं सबको आप पास आप जाते हैं, थोड़ा बैठिए यहाँ पे विश्राम कीजिए, थोड़ा खाइए पिए, जब मुझे जाना है तो चलेंगे आपके साथ, आपको कोई टाल थोड़ी सकते हैं, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। और मृत्यु को भी लगा पहली बार किसी ने उनको वेलकम किया है पहली बार किसी ने बोला कुछ खा लो पी लो, तो मृत्यु ने बोला फॉर अ चेंज चलो ठीक है इनकी मैं हॉस्पिटैलिटी स्वीकार कर लेती हूँ। तो मृत्यु इतनी थकी हुई थी बेचारी कॉन्स्टेंट, ये तो हर समय सब जीवों के पीछे,
मतलब इतना अच्छा रिलैक्सेशन का टाइम कहाँ मिलेगा, थोड़ा रिलैक्स करना शुरू कर दिया। और इस व्यक्ति ने बोला इसकी लिस्ट कहाँ है मृत्यु देने की, देखता हूँ, उसको हैक कर लिया, पूरा प्रोग्राम डिबग कर लिया। बोले अरे वाह, ये तो पता चल गया सबसे नाम मेरा ऊपर है, और पूरा प्रोग्राम चेंज करके अपना नाम सबसे नीचे ले आया। और वैसे मैं मृत्यु उठी, बोला सब क्लास फर्स्ट क्लास, चलो बढ़िया फीस वीस खाओ। तो मृत्यु ने बोला आपने मुझे इतनी हॉस्पिटैलिटी दी है, मैंने अपने सारे नियम बदल दिए, अब मैं सोच रही हूँ मैं शुरुआत ऊपर से नहीं नीचे से करूँ। सारी की सारी प्लानिंग भरे के भरे रहे, कोई भी नहीं टाल सकता मृत्यु, कोई नहीं। तो समझना बहुत जरूरी है कि मृत्यु है क्या। वास्तव में देखा जाए तो मृत्यु एक भ्रम है। भ्रम कैसे है, क्योंकि हमारे जो अस्तित्व है, हम जीवात्मा है लेकिन ढके हुए इस मृत शरीर से। शरीर जड़ है, शरीर पहले से ही मरा हुआ है। हम ये नहीं कहते ये टेबल मर गई, काल के प्रभाव से क्षय हो जाएगी, खराब हो जाएगी, कपड़ा फट जाएगा। हम नहीं कहते कपड़ा मर गया, टेबल मर गई, रोते ना, ये तो काल के प्रभाव से होता ही है। तो शरीर तो जड़ है ही, शरीर तो ढलना ही ढलना है, खत्म होना ही होना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और आत्मा चिन्मय है, आत्मा कोई मरती नहीं, अजर है, अमर है। आत्मा मर नहीं सकती, शरीर पहले से ही मरा हुआ है, तो मृत्यु किसकी हुई। आत्मा की मृत्यु होती नहीं, शरीर तो वैसे ही मरा हुआ है, मरे हुए की क्या मृत्यु होगी। और आत्मा वैसे ही चिन्मय है तो मरा क्या, बताओ, कोई भी नहीं मरा, क्या रोना धोना फिर। आत्मा चिन्मय है, मरती है नहीं, शरीर पहले से ही मरा हुआ है, तो मरा क्या, कुछ नहीं मरा, केवल इस शरीर को बदल लिया बस। मृत्यु का मतलब है स्थूल शरीर का बदलना, एक स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरे स्थूल शरीर में चले जाना बस। तो इसमें कुछ हानि तो हुई नहीं, पुराना कपड़ा था त्याग के नया कपड़ा ग्रहण कर लिया, लेकिन साथ में जो गया वो गया सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जब तक भौतिक अस्तित्व है चलता रहता है, तो असली जो मोक्ष होगा स्थूल शरीर से छुटकारा पाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो छुटकारा तो मिल ही जाएगा, छुटकारा हमें पाना है इस सूक्ष्म शरीर से। और श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कृष्ण भानावत आंदोलन इस सूक्ष्म शरीर को एनलाइटन करने के लिए है, इस सूक्ष्म शरीर को प्रशिक्षित करने के लिए है, कैसे हम इस सूक्ष्म शरीर से मुक्त हो सकते हैं या इसको बदल सकते हैं। सूक्ष्म शरीर को बदलना ही वास्तव में असली हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, कैसे सूक्ष्म शरीर को बदल के हम भगवत धाम वापिस जा सके। तो मृत्यु तो प्रतिक्षण हो रही है, प्रतिक्षण अपना शरीर बदल रहे हैं। प्रभुपाद बताते हैं देहमस्मि यथा देहे को मारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मोहयति। ये शरीर तो बदल ही रहा, देहांतर तो हो ही रहा, इसी जीवन में कितने देहांतर हो गए, और इसको समझना है तो धीर व्यक्ति इससे मोहित नहीं होगा। श्रीला प्रभुपाद जी का कहना है कि जब तक पूरे समाज में इस भगवदगीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक को हम सही ढंग से नहीं समझाएंगे, पूरा समाज अज्ञानता की तरफ बदले जाएगा। ये पूरे समाज के लिए ज्ञान देना बहुत आवश्यक है, इसीलिए प्रभुपाद जी ने श्लोक में बहुत से लेक्चर दिए दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में, और अलग अलग तरीके से प्रभुपाद ने हमें समझाया कि कैसे आत्मा शरीर से अलग है। तो एक लेक्चर में श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं जब किसी बच्चे का जन्म होता है हम खुशियां मनाते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं बच्चे का जन्म नहीं हुआ, मृत्यु का जन्म हुआ है। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। बच्चा ग्रो करना शुरू करता है, इज नॉट ग्रोइंग, इज डाइंग, क्योंकि वो मृत्यु की तरफ चल रहा है, ये समझना है। तब तो हम बड़े खुश होते हैं जब ग्रोथ दिखाई दे रही है, वो तब भी कोई ग्रोथ नहीं है, तब भी क्या है, ही इज डाइंग, वो मर ही रहा है, क्योंकि मरने की तरफ ही अग्रसर है। फिर वो नया शरीर बदलेगा, हर क्षण उसका शरीर बदलता जा रहा है, यानी कि हर क्षण वो मरता जा रहा है। तो तब तो हमें कोई दुख नहीं होता, बच्चा बड़ा हो रहा है तो बड़े खुश होते हैं, और लेकिन तभी वो मर रहा है। तो मृत्यु को समझना बड़ा जरूरी है कि है क्या मृत्यु। तो इसलिए जैसे कि जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि मृत्यु एक अंतिम परीक्षा के समान है ना। तो परीक्षा की जो छात्र तैयारी कर लेता है वो परीक्षा से डरता नहीं है, जिसने परीक्षा की तैयारी नहीं की वो परीक्षा के नाम से बेहोश हो जाता है ना, मूर्छित हो जाएगा परीक्षा का नाम सुनते ही। तो अगर मृत्यु को परीक्षा के लिए तरह लेंगे और पूरा जीवन इस परीक्षा की तैयारी करेंगे, पूरा जीवन तो परीक्षा के समय हमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। इसलिए सारे महत्वपूर्ण शास्त्र हमें मृत्यु का ही ज्ञान देते हैं। दो महत्वपूर्ण शास्त्र तो मृत्यु से ही प्रारंभ हुए। कौन कौन से? श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता, दोनों मृत्यु से ही शुरू हो गए, मृत्यु के भय से ही शुरू हुए। अर्जुन बहुत भयभीत था अपने रिश्तेदारों की मृत्यु को लेकर, तो भगवान ने उसको आत्मा का ज्ञान दिया। और जी हाँ, श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज ने पूछा कि जो व्यक्ति मृत्यु के कगार पे है उसका परम कर्तव्य क्या है, और श्रील प्रभुपाद बताते हैं दूसरे स्कंद से लेकर 22 स्कंद तक पूरे के पूरे श्लोक यही, कैसे जीवन को त्यागना है, शरीर को त्यागना है, इसी कला को सिखाने के लिए है। तो मनुष्य जीवन की परिकाष्ठा है मृत्यु के कला को सीखना, आर्ट ऑफ डाइंग। अगर मरने की कला को सीखेंगे तभी जीने की कला को जान पाएंगे। हर कोई अच्छा जीना सीखना चाहता है, लेकिन जो भक्त लोग हैं वो अच्छे ढंग से मरना सीखना चाहते हैं कि अच्छे ढंग से कैसे मरे। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हो जाएगा वो कृष्ण भक्त कहलाएगा। सारे के सारे रोते तब वो आर्ट ऑफ लिविंग सीखता है। फायदा है क्या? पहले आर्ट ऑफ डाइंग सीखना है। आर्ट ऑफ डाइंग सीखने से हम आर्ट ऑफ लिविंग सीख सकते हैं, और वास्तव में आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है, आर्ट ऑफ लिविंग है, LEAV। लिविंग का मतलब है आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे संसार से निकलना है। और बाकी लोग क्या सीख रहे हैं, कैसे संसार में रहना है, संसार में तो रह नहीं सकते, तो प्रतिक्षण हम मर रहे हैं। तो बहुत आवश्यक है पहले ये जानना कि मरने की क्या कला है। मरने की कला से हम सीखेंगे कि जीने की क्या कला है। जैसे कि इन्होंने बताया नास्तिक लोग, वो समझते हैं मृत्यु के साथ सब खत्म हो जाता है, तो सब खत्म हो जाए तो जीने की कला क्या है? चारक मुनि जो बताते हैं ऋणम कृत्वा विदम विवेक यावत जीवे सुखम जीवे, क्योंकि मरना ही है। वस्मी भूतस्य देवस्य पुतः पुनः आगमनो भवेत, अरे शरीर तो जल गया, पुतः पुनः आगमनो भवेत, दोबारा किसने आना है? ले लो, जिससे भी ऋण लेना ले लो, खूब ऋण ले लो, गया उसका पैसा, हम गए पैसा खत्म। किसने देखा अगला जन्म, कहां अगला जन्म होगा? खाओ पियो ऐश करो फ्रेश, झूठ बोलना है, पाप करना है, धोखा देना है, व्यभिचार करना है, जो मर्जी करो, यावत जीवे सुखम जीवे, सुख से जीवे। ये पॉलिसी, ये आर्ट ऑफ लिविंग हो गया उनका। क्योंकि आर्ट ऑफ डाइंग क्या है? भस्मी भूत से देह से सब कुछ तो खत्म हो जाएगा। तो ये जो हमारा मृत्यु के बारे में धारणा होगी वैसे हमारी जीवन शैली निर्धारित होगी। उसी ढंग से हम देखते हैं भक्तों का, भक्तों को बता रहे भगवान गीता के 8वें अध्याय में पूरे मरने की कला सिखा रहे हैं। अंत काले चिमामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, और फिर यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम, या फिर तम तमेव गत कौन्तेय सदा तद् भाव भाविता। ये दो श्लोक इसे अगला स्मरण जियो और युद्ध करो, ये आर्ट ऑफ लिविंग है। क्यों? क्योंकि आर्ट ऑफ डाइंग पहले बता दिया, यम यम वापिस स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम। जीवन जिस तरह से जीवन के अंतिम क्षण में जैसा स्मरण होगा वैसे हमें अगला शरीर प्राप्त होगा। तो इसलिए आर्ट ऑफ डाइंग से आर्ट ऑफ लिविंग निर्धारित होता है। इसलिए मृत्यु के बारे में हमारी जो स्पष्ट धारणा होगी हमारा जीवन उतना सरल और मधुर होगा, और जितना मृत्यु के बारे में हमारा कंफ्यूजन होगा उतने हम भयभीत रहेंगे इस जीवन में भी और अगले जीवन में पता नहीं क्या मिलेगा। तो समझना बहुत आवश्यक है पूरे शास्त्र। इसीलिए प्रभुपाद कहते थे साधन कर लो भजन कर लो मरते जान ले है। कितना साधन किया है कितना भजन किया है ये मालूम चलेगा मृत्यु के समय, परीक्षा की घड़ी। कैसे तैयारी की है, क्या क्वालिटी थी हमारे जप की, क्या क्वालिटी थी हमारे श्रवण की, क्या क्वालिटी थी हमारे भक्तों के संग की, मालूम चलेगा मरने के समय। पूरा एसेंस सार मालूम चलेगा मरते जानने है। इसलिए पूरे जीवन को कैसे करना है, कैसे साधना करनी है, सारी साधना का सारे भजन का एक ही उद्देश्य है अंते नारायणे स्मृति। एतावान सांख योग्योभ्य स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लब्ध परम पुंसाम अंते नारायणे स्मृति। सारे के सारे सांख योग, सारे के सारे धर्म, उसका मुख्य टेस्ट क्या है? अंते नारायणे स्मृति। अंतिम समय में हमने कैसे भगवान का स्मरण किया। नास्तिक लोग यही चाहते हैं कि जो जीवन मिला इसको उठा लें, इसका आनंद उठा लें। एक बार प्रभुपाद लॉस एंजलिस में थे तो लेक्चर देने जा रहे थे, उन्होंने एक बिलबोर्ड देखा सिनेमा का, और सिनेमा थी सेक्स आफ्टर डेथ। प्रभुपाद को बहुत हंसी आई क्या, और फिर प्रभुपाद ने लेक्चर में बोला कि ये लोग पूछ रहे हैं इज देयर एनी सेक्स आफ्टर डेथ, इफ देयर इज सेक्स आफ्टर दैट देन नो प्रॉब्लम, फिर हमें कोई डर नहीं है कि मृत्यु के बाद भी हमें मैथुन करने को मिलेगा, फिर कोई चिंता की बात है, फिर तो डेथ इज लाइक अ लाइफ, वी एक्सेप्ट डेथ। लेकिन अगर डेथ के बाद सेक्स नहीं है तो फिर गड़बड़ है। तो प्रभाव उदाहरण दे रहे हैं कि भारत में एक दोस्त अपने दोस्त को समझा रहा था दारू मत पिया करो नर्क में जाओगे। बोला क्या मैं तो मेरे पिताजी भी पीते, बोले वो भी नर्क में जाएंगे, मेरे भाई भी पीते वो भी नर्क में जाएंगे, ताऊ जी पीते वो भी नर्क में जाएंगे, वो मासा जी पीते वो भी नर्क में जाएंगे, क्या सारे नर्क में जाएंगे, तो फिर क्या फर्क पड़ता है, नर्क तो स्वर्ग है सब बैठ के पिएंगे। तो इसी ढंग से अगर मृत्यु के बाद सेक्स है फिर क्या डरने की बात है। प्रभुपाद कहते हैं है कौन सी बड़ी बात है, मृत्यु के बाद सेक्स तो है, हर योनि में सेक्स है, अगले योनि फिर मिलेगी फिर सेक्स करोगे। प्रश्न ये पूछो कि ये सेक्स आया कहां से, ये प्रश्न है। ये नहीं पूछना कि मृत्यु के बाद सेक्स मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मिलेगा ही, पूछो इसका आदि क्या है, इसका सोर्स क्या है, वो है आदि रस भगवत धाम से। तो इसलिए किस तरह की इंक्वायरी करनी, लोग ये चाहते हैं कि इस जीवन में खुश रहे, खुश रहने के लिए सुखी रहने के लिए जानना पड़ेगा कि शरीर त्यागना कैसे है। तो ये कला सीखनी, और पूरा हमारा प्रशिक्षण इसीलिए है कि कैसे शरीर को त्यागना। प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट मीन्स टू स्टॉप डेथ, इस मृत्यु को रोकना। कैसे मृत्यु को रोकना, अगर अगला जन्म कोई भौतिक शरीर में नहीं है तो मृत्यु रुक गई, अगला जन्म आध्यात्मिक शरीर है इसका मतलब वन ओवर डेथ। हम बोलते हैं नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वतम व्यासम ततो जयम उदीरयेत। वैदिक शास्त्रों को जय भी कहा जाता है, क्योंकि वैदिक शास्त्रों का सही ढंग से अनुशीलन किया जाए तो हमें मृत्यु के ऊपर विजय दिलाते हैं, इनको जय बोला गया है। भागवतम के पहले स्कंद के 18वें अध्याय के 4वें श्लोक में, जिसमें कि ब्राह्मण बालक द्वारा परीक्षित महाराज जी को श्राप दिया गया, इसके एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत विशेष बात बताते हैं। कहते हैं जीवन के अंतिम क्षण में भगवान की दिव्य प्रकृति को स्मरण करके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जाती है। जीवन की यह सिद्धि उसे ही मिल पाती है जिसने सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त आत्मा द्वारा गाए जाने वाले वैदिक स्त्रोतों या उन्हीं की गुरु शिष्य परंपरा के किसी व्यक्ति से भगवान की वास्तविक दिव्य प्रकृति के विषय में जाना है। किसी प्रमाणिक गुरु से भगवान के विषय में जाना है, वही जीवन के अंत काल में भगवान का स्मरण कर सकता है। प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं कि इस तरह विनीत शिष्य जीवन के अंत तक दिव्य स्तर पर रह सकता है। इंग्लिश में लिख रहे हैं सबमिसिव डिसाइपल ही है जो कि अंत में कृष्ण का स्मरण कर पाए। और वैज्ञानिक अनुकूलन द्वारा मनुष्य भगवान को जीवन के अंत समय तक स्मरण रख सकता है। साइंटिफिक कल्टीवेशन, वैज्ञानिक अनुकूलन द्वारा सिस्टमेटिक श्रवण कीर्तन करके एक प्रमाणिक गुरु से विनीत होकर सुनकर उसको अपने जीवन में कल्टीवेट करके हम जीवन के अंत काल में कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। गीता के 8वें अध्याय के 5-6 श्लोक के तात्पर्य बताते हैं, अगर कोई सतोगुण में जीवन जीता है और निरंतर कृष्ण का कीर्तन करता है तो पूरी संभावना है कि अंत काल में भी वो कृष्ण का स्मरण कर पाएगा। सतोगुण में जीना, सतोगुण में जीना और कृष्ण का स्मरण करना। और ऐसा नहीं है कि केवल थ्योरेटिकल है, हम देखते हैं इसके शास्त्रों में बहुत से एग्जाम्पल मिलते हैं, और साथ साथ व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं किस ढंग से भक्तों ने शरीर छोड़ा। और प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस का कोर्स पूरा कर भी नहीं पाया तब भी उसको अगले जीवन में ये मौका मिलेगा। प्रति जीवन में हम कुछ सीखते हैं, ये मनुष्य जीवन मिला है अपनी चेतना की प्रगति के लिए, चेतना को अग्रसर, चेतना को ऊपर उठाने के लिए, एक एक क्षण हमारा शुद्धिकरण के लिए। और साथ में ये पूरे सृष्टि की रचना महाविष्णु ने अपनी कृपा से की है, कोई हमें पनिशमेंट देने के लिए नहीं, ये जो कृपा की अभिव्यक्ति है। इसलिए अगर हम किसी टेस्ट में फेल भी हो जाते हैं भगवान फिर से कृपा करते हैं, फिर से हमें मौका देते हैं कि भगवान हमसे ज्यादा उत्सुक हैं कि हम उनके पास जा सके, इसलिए भगवान हमें बार बार मौका देते हैं। तो प्रति जीवन हमें मौका मिलता है एक क्लासरूम की तरह प्रत्येक लाइफ, जिससे हम कुछ सीखें और अपनी चेतना को आगे बढ़ाएं, और जब पूर्ण रूप से ये कोर्स हो जाएगा तब हम भगवत धाम वापस जाएंगे। तो प्रत्येक जीवन हमारे लिए सीखने के लिए है, अपने आप को शुद्ध करने के लिए है, इसलिए प्रत्येक क्षण का उपयोग अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कई बार अपने पुस्तकों में लिखते हैं कि अपने जीवन को इस ढंग से डालें कि हमेशा हम कृष्ण का स्मरण कर सके। यही कला है, किस ढंग से हम जीवन को उठा लें कि कभी कृष्ण को भूले ना। कृष्ण को भूल गया, हमने कुछ काम तो निकलवा लिया, लेकिन क्या हुआ, चेतना को हमने शुद्ध नहीं कर पाया। तो ये फोकस रखना, ये भक्तों के संग में हमें ये सीखना है कि कैसे हमेशा हम कृष्ण का स्मरण कर सके, और प्रत्येक जीवन में मौका मिलेगा, है ना। इसलिए हम अज्ञानता में हमारा जन्म होता है और इस संसार में हम हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारे में अनर्थों की कमी है, अनर्थ बहुत है, लेकिन अपने अनर्थों को स्वीकार ना करना और उनको नकारना और बोले ठीक है मैं तो जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, तो ये कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है। अगर हम अपने अर्थों को स्वीकार करें और मेहनत करें कि इस जीवन में ही इसी जीवन में ही अपने अर्थों से छुटकारा पाना है, उसके लिए मेहनत करें, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। अगर पूर्ण से सफलता ना भी मिली तो अगले जन्म में हम अच्छे स्तर पे होंगे भक्ति करने के लिए, ये अनर्थ हमें कम सताएंगे। लेकिन अपने अर्थों को स्वीकार कर लिया, मैं तो ऐसा ही रहूंगा, हमें जैसा हूं वैसा ही हूं, मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए बस। लेकिन ऐसे स्थिति में तो हम भगवान जा नहीं सकते, तो इसके लिए यही मनुष्य जीवन मिला है अपने आप पे मेहनत करने के लिए। हम देखते हैं व्रतासुर का उदाहरण देखते हैं। व्रतासुर ने इंद्र के साथ युद्ध कर रहे थे, कितने खुशी खुशी उन्होंने मृत्यु को स्वीकार किया। वही व्यक्ति खुशी खुशी मृत्यु को स्वीकार कर सकता है जो कि बिल्कुल तैयार हो, उसकी चेतना इतनी उत्कृष्ट हो। ऐसे परीक्षित महाराज भी कह रहे थे, गंगा के तट पे बैठा हूं, सभी साधुगण यहां पर हैं और मैं तो बस चाहता हूं अभी वो सांप आए और मुझे डस ले, मैं मृत्यु को प्राप्त कर लूं, और अगर मैं भगवान धाम नहीं भी जा पाता तो मेरी कुछ इच्छाएं हैं, डेथ विश बोलते हैं। मेरी क्या डेथ विश है कि अगले जन्म मुझे मिले, अगर इस संसार में मिलता भी है तो ऐसा जन्म मिले जिसमें मेरी कृष्ण के प्रति पूर्ण आसक्ति हो। और दूसरी विश वो एक्सप्रेस करें, इच्छा एक्सप्रेस करें कि हमेशा मैं भक्तों के संग में रहूं, और तीसरा सभी जीवों से मेरा मैत्री भाव हो, बस ये चाहिए। अगर मेरे को जन्म हो भी गया तो ऐसा हो, और नहीं तो मैं तैयार हूं, इसी समय सांप आ जाए मुझे डस ले। इसी ढंग से वृतासुर भी पूर्ण रूप से तैयार थे, इंद्र के साथ युद्ध हो रहा था। इंद्र को उन्होंने, आप देखते हैं छठे स्कंद में बहुत विस्तार में उनके युद्ध का वर्णन किया गया है। उन्होंने इंद्र की तरफ एक जलता हुआ त्रिशूल फेंका, इंद्र ने अपने वज्र से उस त्रिशूल को काट दिया और साथ ही साथ मृतासुर की दाई भुजा भी काट दी। मृतासुर की केवल एक भुजा रह गई और उसने फिर से इंद्र के ऊपर आक्रमण किया, और ऐसा आक्रमण किया कि इंद्र के हाथ से उसका वज्र नीचे गिर गया। जब इंद्र के हाथ से वज्र नीचे गिर गया तो इंद्र अब बड़े संकोच कर रहे थे, अब तो मैं बिल्कुल हार गया, बिल्कुल निहत्ता था, और मैं कैसे इस अस्त्र को ऊपर दोबारा उठाऊं। तो मृतासुर वहां रुकते हैं और इंद्र को उपदेश देते हैं, बोले घबराओ मत, उठाओ इसको, है ना। ये तो बोले कि हमारे जीवन में जीत और हार, सुख और दुख, यश और अपयश तो आते ही रहेंगे, क्योंकि हम परम नियंता नहीं है, परम नियंता तो भगवान है। हमारा तो केवल कर्तव्य है युद्ध करना, और अगर हम इसमें संभाव रहे तो हम भगवान की कृपा को आकर्षित करते हैं। और बड़े जो तमोगुण रजोगुण सतोगुण है, ये तो आत्मा के गुण नहीं है, ये तो भौतिक प्रकृति के गुण है। आत्मा तो केवल दृष्टा है, जो इस बात को समझ जाएगा वो मुक्त हो जाएगा। और बोले ये जो युद्ध है ये तो एक गैम्बलिंग का मैच है, जुआ जुआ खेल रहे हैं, किसने जीतना किसने हारना हम नहीं जानते, कोई भी जीत सकता है कोई भी हार सकता है, तो इसको उठाओ और युद्ध करो। तो इंद्र को इतना इंस्पायर किया इंद्र को लगा, फिर बोला इंद्र बोला आप हैं असुर के शरीर में लेकिन बहुत बड़े भक्त हैं। तो इंद्र और जो वृतासुर थे युद्ध भूमि में कृष्ण की चर्चा कर रहे थे, और फिर दोनों ने अपना पूरा कर्तव्य का पालन किया, खूब उत्साह से लड़ाई की, और इंद्र ने वृतासुर की दूसरी बाजू भी काट दी और उसका खून बह रहा है। बोले दोनों तरफ से खून बह रहा है, बहुत सुंदर दृश्य था। और फिर वृतासुर ने क्या कहा, उनका बहुत ही विशाल काय थी उसकी, वो इंद्र के पास गए, अपना मुंह खोला और पूरे पूरे इंद्र को निगल लिया, पूरा इंद्र अपने वज्र के साथ वृतासुर के उदर में। और उसके बाद इंद्र ने क्या किया, अपने वज्र से उदर वृतासुर के उदर को काटा और बाहर आए, और फिर वृतासुर के सर को काटने लगा। सर को काटने में पूरा एक साल लग गया। तो विश्वाचार्य ठाकुर बताते हैं कि जीत वास्तव में किसकी हुई, वृतासुर की हुई, दोनों रूप से, भौतिक दृष्टि से भी आध्यात्मिक दृष्टि से भी। वृतासुर ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान से उन्होंने पहले ही प्रार्थना कर ली थी कि युद्ध में जाने से पहले उन्होंने प्रार्थना की कि हे समस्त सौभाग्य के स्रोत भगवान, मुझे ना तो ध्रुव लोक में, ना स्वर्ग में अथवा ब्रह्म लोक में सुख भोगने की इच्छा है, और ना ही मैं समस्त भूलोकों अथवा अधलोकों का सर्वोच्च अधिपति बनना चाहता हूं। मैं योग शक्तियों का स्वामी भी नहीं बनना चाहता, ना ही आपके चरण कमलों को त्याग कर मोक्ष की कामना करता हूं। मुझे केवल आपके चरण कमल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे युद्ध में जीत हार कुछ इसका लेना देना नहीं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जब उन्होंने इंद्र को निगल लिया तो उन्होंने इंद्र को खत्म कर दिया था। इसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने सारे के सारे प्रयास छोड़ दिए और केवल कृष्ण पे ध्यान लगाया, उनके इष्ट थे संकर्षण, उन पर उन्होंने ध्यान लगाया और अपने आप को बिल्कुल उन्होंने हत्या कर दिया, कोई प्रयास नहीं किया। क्यों उन्होंने बिल्कुल युद्ध करना बंद कर दिया, उसने बिल्कुल समाधि में थे, तो फिर इंद्र ने उनका उदर काटा और फिर सर को काटा। तो वो तो पहले ही, वो तो केवल शरीर को उन्होंने काटा, उनकी आत्मा तो पहले ही भगवान संकर्षण के चरणों में चली गई थी। तो इस ढंग से वृतासुर ने अपना शरीर त्यागा। भीष्म पितामह को देखते हैं कैसे अंतकाल में उन्होंने शरीर को त्यागा, पूर्ण रूप से उनका मन, उनकी बुद्धि, उनकी इंद्रियां सब कुछ कृष्ण में थी। और श्री प्रभुपाद जी बताते हैं हम भी भीष्म पितामह के सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं अगर हम हमेशा ध्यान पूर्वक भगवद गीता और श्रीमद भागवतम का श्रवण करें। इसी ढंग से हम देखते हैं श्री प्रभुपाद जी के कितने ही प्रिय शिष्यों ने कितने गौरवपूर्ण तरीके से शरीर को त्यागा। परम पूजनीय भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज सन 2005 में उन्होंने शरीर त्यागा। और बताते हैं कि सन 2004 में वो मॉन्ट्रियल की रथ यात्रा में थे जगन्नाथ जी की, तभी उनको उनके पैर में कुछ पीड़ा हुई और वहां के डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि आप बायोप्सी करवाइए। तो वो आए वापस अमेरिका में, आए बायोप्सी हुई और जब उसकी रिपोर्ट आई तो मालूम चला पूरा कैंसर एडवांस स्टेज का, फोर्थ स्टेज पे। और ये रिपोर्ट स्वयं भक्ति ने स्वयं हमारा लेके आए, अपने शिष्यों से मिले, बड़े खुशी खुशी मिले, हंसते हंसते। तो शिष्य बड़े हैरान थे, हंस रहे कोई खास बात नहीं है, हंसते हंसते बताया कि मुझे मेलानोमा है, कैंसर है फोर्थ स्टेज का, अब मैं ज्यादा जीवित नहीं रहूंगा। तो शिष्यों को विश्वास ही नहीं हुआ, इतने हंसते हंसते बता रहे हैं, बोले कैसे। तो उनको मालूम चला गया तो भक्ति स्वामी महाराज की नेचर है कि दूसरों के दुख को कम करना, इसलिए दूसरों को दुख ना हो, पीड़ा ना हो, इसलिए मुस्कुरा रहे थे। और उनका कहना था, उनकी एक स्टेटमेंट थी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट, वो कहते थे डाई बिफोर यू डाई, मरने से पहले मर जाओ, मरने से पहले मर जाओ, मरने से पहले मर जाओ, भौतिक रूप से सारी आसक्तियां खत्म कर लो, ये मनुष्य शिविर इसीलिए है, डाई बिफोर यू डाई। और प्रार्थना की उन्होंने, उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बोला मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान जो कुछ आपको करना है मेरे साथ कीजिए, लेकिन मुझे प्रभुपाद जी का शुद्ध सेवक बना दीजिए, जो कुछ मुझसे छीनना है छीनिए, लेकिन मेरी सारी आसक्तियां समाप्त कर दीजिए। है हिम्मत किसी में प्रार्थना करने की, जो कुछ करना है आपको, जो जीवन में उथल पुथल करनी है करिए, लेकिन मुझे शुद्ध सेवक बनाइए। ऐसा उनके अंदर कंपैशन था, करुणा थी। सन 2004 में उन्होंने प्रभुपाद जी को व्यास पूजा ऑफरिंग में लिखा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि जैसे वसुदेव दत्त ने सभी जीवों के पापों को अपने ऊपर ले लिया था, मैं चाहता हूं ये सारे जो भक्त हैं जो संघर्ष कर रहे हैं अपने अपने अनर्थों के साथ, इन सब के जो पाप हैं मेरे को दे दें ताकि ये लोग अच्छे ढंग से भक्ति कर पाए। तो इस ढंग के भाव से उन्होंने फिर वो बाल आखिरी के कुछ दिनों में गीता नागरी में चले गए, जो उनकी पूरी वहां पे समुदाय था, और वहां पे भी संडे फीस लेक्चर दिया करते थे बड़े उत्साह से। और बिना में उनका लेक्चर देखा जो उन्होंने लास्ट लेक्चर दिया, वीडियो में है उसका, और भक्तिदेव स्वामी महाराज हैं साथ में, राधानाथ स्वामी महाराज बैठे हैं, सभी उनके शिष्य हैं। और भक्तिदेव स्वामी महाराज बताते हैं आई नो वेयर आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, मुझे मालूम है मैं कहां जा रहा हूं, आई नो माई सर्विस, मुझे मालूम है मेरी सेवा क्या है। इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं जिन शिष्यों को कभी मार्गदर्शन करना होगा तो मैं उनके स्वप्न में आ जाऊंगा। और इस ढंग से कहते हुए फिर अंतिम के 6 वीक जो 6 सप्ताह थे मैंने अपने वो परम मित्र श्री जो साधारण स्वामी महाराज के साथ रहे, पूरा श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत का उन्होंने श्रवण किया और बड़े गौरवपूर्ण तरीके से उन्होंने शरीर को त्यागा। तो ऐसे कितने ही उदाहरण है। ये तो कह सकते हैं प्रभुपाद जी के अग्रणी शिष्य हैं, हम अपने इसी जनरेशन में देखते हैं। अभी इस बीच मोहनलाल प्रभु जी के पिताजी ने शरीर त्यागा तो अस्पताल में थे तो प्रभु जी उनके लिए ले गए अस्पताल में, अपोलो हॉस्पिटल में, तो सामने राधा पारसादी का लेमिनेशन रखा, बोला आपके दर्शन हो रहे हैं, बोले इससे तो मुझे हर जगह कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। ऐसे में बोल रहे हैं आराम से, ये केवल कहने की बात नहीं, आईसीयू में इतने दिनों से बैठे हैं, पता नहीं दिन है कि रात है, कौन सा दिन है कुछ नहीं पता। आप आईसीयू में कभी एडमिट होए ना, भगवान ना करे, अगर आईसीयू में कोई एडमिट होता है और कुछ ज्यादा दिन एडमिट हो जाता है तो उसको पता ही नहीं होता क्या दिन का समय है, रात का समय है, क्या है, एकदम कन्फ्यूज अवस्था में रहता है व्यक्ति। और उसमें बोल रहे हैं कि मेरे को हर जगह कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। बोले लेमिनेशन तो बहुत छोटी है, कृष्ण बहुत बड़े, इसमें कैसे आएंगे। और इस ढंग से बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने विषय छोड़ा। तो इसमें पूरा विश्वास होना चाहिए, ये आंदोलन है हमें सिखाने के लिए कि शरीर कैसे त्यागना है, और ये बड़ी खुशी खुशी चैंटिंग डांसिंग एंड फिस्टिंग से सीखना है। ऐसा नहीं है कि अरे ये कैसा है मृत्यु का स्मरण करते रहे, नहीं, मृत्यु का स्मरण है, मृत्यु मतलब है एक अभक्त के लिए मृत्यु बहुत भयावह है, लेकिन एक भक्त के लिए मृत्यु बहुत सुंदर अवसर है, क्योंकि वो अपने सनातन जीवन को प्राप्त करने वाला है। जैसे जैसे व्यक्ति भक्त अपने मृत्यु की तरफ, शरीर छोड़ने की तरफ अग्रसर होता है, वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर रहा है और उसमें और उसका उत्साह बढ़ता जाएगा। जैसे उस दिन बता रहे थे मोहनलाल प्रभु जयपदा का स्वामी महाराज, इस अवस्था में भी इतनी उन्नत भक्ति कर रहे हैं कि सभी सभी डॉक्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसी अवस्था में कोई व्यक्ति बिना भय के इतना भागदौड़ कैसे कर सकता है, इतनी इतनी तबीयत खराब हो जाती है, पानी भर जाता है लीवर में, लंग्स में, निकलवाते हैं फिर उड़ान करके इधर उधर भाग रहे हैं। तो वो डॉक्टर इतना इंप्रेस हुआ, डॉक्टर सरीन है, जब महाराज की व्यास पूजा थी तो दिल्ली से स्पेशल फ्लाई करके गया, महाराज की व्यास पूजा उसने अटेंड की। बोले ऐसा तो मैंने पेशेंट कभी देखा ही नहीं। तो इसलिए हम लोगों को गर्व होना चाहिए, हम शिला प्रभुपाद जी के आंदोलन में हैं और डाई बिफोर वी डाई, ये जीवन अपने जीवन में अपने हृदय में जो हमारे तरह तरह के अनर्थ हैं, एक दूसरे की कुछ गलत भावनाएं हैं, द्वेष है, इसको हम खत्म करें। कभी भी हमारे पर मृत्यु आ सकती है, ऐसा नहीं है कि हमारे कम से कम 100 साल चलेंगे, और किन किन दुर्भावनाओं को, गलत विचारों को हम लेकर बैठे रहते हैं और कहते हैं नहीं चलता ही रहेगा ऐसे, नहीं, इस समय है अपने आप को हम शुद्ध करें और जो भी करना पड़े हम करें, और अगर अच्छे ढंग से करेंगे तो इस जीवन में भी हम आनंद में रहते हैं और निश्चित रूप से इस शरीर त्यागने के बाद भी भगवत धाम जाके आनंद में रहेंगे। तो इसमें लाभ ही लाभ है, इस मार्ग में कोई हानि नहीं है। और लेकिन इस बात को अवॉइड करेंगे क्योंकि हमें भय है, अभी भी हमारे अंदर ये टेंडेंसीज हैं, जैसे कि हिरण्यकश्यप की टेंडेंसी है मृत्यु से भयभीत होना, तो वो टेंडेंसीज हैं, इसको अवॉइड करेंगे। ये तो बड़ा भयानक टॉपिक है, इस पर चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, इसको समझने का प्रयास ही नहीं करना, खुश रहो। बिना मृत्यु को सही ढंग से समझे हम खुश रह ही नहीं सकते, जो डर लगा रहेगा संसार में हर चीज क्षण भंगुर है, थोड़ी देर के लिए आएगी चली जाएगी, एंग्जाइटी रहेगी, अपनी पावर, अपनी पोजीशन, अपनी पोस्ट, अपनी रेपुटेशन, अपना यश, इसी की चिंता बनी रहती है, इसको संभाल के रखें, इसी के लिए भी एंग्जाइटी रहती है, मेरे टैलेंट्स, मेरे स्किल्स, ये सब जब छिन जाएगा हमसे तो असंगम ही हम पुरुष, आत्मा का इस सबसे कुछ भी लेना देना नहीं है, आत्मा की खुराक है केवल कृष्ण का स्मरण। तो वो हम पूरे समुदाय के रूप में और व्यक्तिगत स्तर पर हम सब एक दूसरे को उत्साहित करें, इस बात का याद दिलाएं और एक दूसरे की मदद करें कि कैसे हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं कृष्ण के स्मरण के लिए, ना कि विस्मरण के लिए। हरे कृष्ण। बड़ा जटिल टॉपिक था, कुछ भी समझ में आया बोलने का प्रयास किया, इसलिए कोई टिप्पणी है, कोई प्रश्न है।
तो
सही बात है, इसलिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। सरप्राइज टेस्ट कभी भी हो सकता है, इसलिए भगवान बोला तस्मात सर्वेषु कालेषु, हर क्षण तो हमें तैयार ही रहना है। यस
हरे कृष्ण। ये क्वेश्चन है ऋषिकेश प्रभु का, न्यूजीलैंड से। पीपल डाई इन कोमा एंड आल्सो विद सडन एक्सीडेंट, there may be no thought in the mind of such a person at the time of death, then what kind of body does this person get in next life?
हाँ, अच्छा प्रश्न है कि कोई कोमा में हो या अचानक किसी का हार्ट फेल हो जाए और भगवान का स्मरण ना कर पाए तो उसको कौन सा शरीर मिलेगा। तो जैसे बोला कि भगवान कोई सेडिस्टिक व्यक्ति नहीं है कि अंतिम समय नहीं किया तो फेल हो गया, ऐसा नहीं। भगवान देखते हैं पूरा जीवन इसने क्या प्रयास किया है, और शायद वराह पुराण में वर्णन है कि अगर कोई एक मांस के ढेले की तरह भी पड़ा हुआ है, जैसे कोमा में है और वो स्मरण नहीं कर पा रहा, तो कृष्ण स्वयं उसके मन में प्रवेश करते हैं, उसको याद दिलाते हैं। और वैसे भी हमें ये गर्व होना चाहिए कि मैं कृष्ण को अपने मन के अंदर लाऊंगा। कृष्ण हमारे मन और बुद्धि से बिल्कुल परे हैं, जब कृष्ण की इच्छा होगी तभी कृष्ण हमारे मन में आएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ में, हम तो केवल प्रयास कर सकते हैं कृष्ण की कृपा को आकर्षित करने के लिए, कृष्ण अपनी कृपा से ही हमारे मन प्रकट होते हैं।
हरे कृष्ण, धन्यवाद, बहुत बहुत बड़ा अच्छा बताया। मुझे मेरा प्रश्न है कि भगवत धाम जाना और कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, इनमें क्या अंतर है? कुछ अंतर है, एक ही बात है।
बिना प्रेम प्राप्त किए भगवत धाम नहीं जाएंगे, इनकम्प्लीट अवस्था में पूरे प्रेम से ओतपोत होंगे तभी भगवत धाम जाएंगे, है ना। और फिर उच्च अवस्था में भक्त ये लक्षण में नहीं होता कि भगवत धाम में जाना, बस प्रेम पाना है, जहां भी रखो प्रेम में रखो। लेकिन हम लोगों को इस संसार से अनासक्त करने के लिए हमेश एटलीस्ट ये तो होना ही चाहिए, मैं जाना ही नहीं भगवत धाम, तो आकर्षण तो होना ही चाहिए, है ना। नहीं तो क्या है, इस संसार में इतने आकर्षण है, जैसे कि कपिल भगवान बताते हैं कि पुरुष स्त्री के लिए मृत्यु समान है, स्त्री पुरुष के लिए मृत्यु समान है, इतना आकर्षण है ना। और जो स्त्रियां हैं वो अगले जन्म में जाकर पुरुष बनती हैं, पुरुष अगले अधिकतर अगले जन्म में स्त्रियां बनती हैं, और ये चलता रहता है संसार में, ये चलता रहता है। कुछ अच्छी सी थोड़ी सी भक्ति की, साथ में आकर्षण रखा स्त्री पुरुष के लिए, बस लिंग चेंज होता रहेगा, वही तिलक रहेगा, वही कंठी रहेगी, दास की जगह देवी दासी होगी, फिर देवी दास से दास हो गया, फिर दास से देवी दास, फिर देवी दासी से दास, ये चलता रहेगा। तो इसलिए आकर्षण बढ़ाना है कृष्ण की, ये लक्ष्य है। तो इसलिए इस संस्था का नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा एक्टिविटीज नहीं है, कॉन्शियसनेस को सत्वगुण में रखना, भगवान के लिए कृष्णा भावना भावित होना, ये ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए ये ट्रेनिंग प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो कार्य करें, एक्टिविटी तो करते ही हैं, साथ में अपनी चेतना पर भी ध्यान रखें। जितना प्रभुपाद कहते हैं कि मेरी सफलता का कारण है कि मैं हमेशा इंट्रोस्पेक्टिव था।
धन्यवाद। मैं जैसे आपने बताया डाई बिफोर यू डाई, हम मृत्यु आने से पहले हम अपने अनर्थों से लड़ें, तो ऐसे लगता है कि इतने सारे अनर्थ हैं, मतलब अनलिमिटेड लगते हैं, तो किस किस पे सबसे पहले जो है वो प्रयास करना चाहिए, और उसको प्रयास करने के लिए जो स्ट्रेंथ है वो कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं, और उसको कैसे कर सकते हैं।
भक्ति में ठाकुर कहते हैं कि सभी अनर्थों की एक ही दवा है कि गुरु के आदेशों का उत्साहपूर्वक पालन करना, इससे हमें बुद्धि प्रदान होती है, और फिर हम वरिष्ठ भक्तों की सहायता लेके किस पे ज़्यादा फोकस करना कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। लेकिन आपने जो बेसिक ये बेसिक्स हमारे हैं भक्ति की, उसको उत्साहपूर्वक करें तो उसी में बहुत स्ट्रेंथ है। पिताजी बता रहे हैं किसी मॉर्निंग प्रोग्राम की, इसी जो पूरे हमारी विधियाँ हैं
ये पूरी हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, एक एक अंग हमारी भक्ति का स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है। इसको हम पूरे ढंग से करेंगे तो हमें शक्ति भी मिलेगी और बुद्धि भी मिलेगी कैसे हमें युद्ध करना है। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो आप सब अपनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव बिंद की, ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की, गाय को प्रेमानंद।